नमस्कार दोस्तों, वैसे तो SBS हिंदी पर हमेशा हम आपको कुछ न कुछ खास शख्सियत से मिलवाने की कोशिश करते रहते हैं, और आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ वो शख्सियत कुछ खास है, जिन्होंने एक साधारण से इंटरनेट कैफे चलाने से अपना करियर शुरू किया, अपनी सफर शुरू की और सूचना अधिकार के कार्यकर्ता और पर्यावरण संवर्धन के क्षेत्र में अपनी पहचान वैश्विक स्तर तक बनाई। पर्यावरण के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड के तौर पर माने जाने वाले गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज से वर्ष 2014 में नवाजा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है, तो इनका नाम है श्री रमेश अग्रवाल। रमेश अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं। रमेश अग्रवाल जी जो आजकल ऑस्ट्रेलिया में पर्यावरण संवर्धन क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सफर पर हैं, और इस सफर के दौरान हमने उनसे बात की। रमेश जी, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
जैसे कि मैंने श्रोताओं को तो आपका परिचय दे ही दिया, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे कि आप 20 साल से अधिक समय से जल, जमीन, जंगल, ये तीन जो जे 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 हैं, उसके संवर्धन में जुड़े हुए हैं, तो इस विषय पर थोड़ी सी जानकारी देंगे।
मेरा जन्म जो है छत्तीसगढ़ के शहर रायगढ़ में हुआ था, और वहीं मेरी शिक्षा वगैरह हुई। मैं कॉलेज लाइफ से ही जो है अपने सामाजिक कार्यों में कुछ रुचि रखा था मैं, और एक NGO से भी जुड़ा हुआ था। तो उस NGO के कारण मुझे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जाने का बहुत ज्यादा मौका मिलता था, और मैंने देखा वहाँ पे कि यौगीकरण के कारण जो है वहाँ पे हमारे मुद्दे हैं जल, जंगल और जमीन, इसको बहुत ज्यादा हानि हो रही थी उसमें जो है, प्रदूषण के कारण जो है इन तीनों ही चीजों को जो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो इसलिए हमने सोचा कि इन मुद्दों पे काम करना जरूरी है, क्योंकि यदि हमारा पर्यावरण ही यदि ठीक नहीं होगा तो लोगों का रहना भी मुश्किल हो जाएगा। और जमीन जो है वो भारत में जो है कृषि प्रधान देश है, प्रदूषण के कारण जो है उनकी जमीनें भी जो है वो सही किस्म से जो है सिंचित नहीं हो पा रही थी, और एक उससे बंजर होती चली जा रही थी। पानी का जहाँ तक सवाल है तो उसमें औद्योगिक प्रदूषण के कारण जो है जो उनका वो जो कचरा है या वेस्ट है वो पानी में डाल दिया जाता था, या कि उनके चिमनियों से जो धुएं निकलते हैं वो सब पानी में जाके जम जाते थे, जंगल भी खत्म होते चले जा रहे थे। तह आदिवासी क्षेत्रों में जो है आदिवासी लोग बहुत ज्यादा जो है जंगल के ऊपर निर्भर करते हैं, उनकी आजीविका का मुख्य साधन है जंगल। वहां से जो तेंदुपत्ता हो गया, अचार हो गया, उन सब चीजों को कलेक्ट करते हैं और बाजार में भी उसको बिक्रय करके अपना आय का स्रोत एक उनका है, और उससे वो अपनी आजीविका चलाते हैं। तो ये एक पहलू था जिसके कारण जो है लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे, इसमें जो है बहुत ज्यादा तकलीफ उनको हो रही थी। तो हमने किया कि अपने अधिकारों के लिए या इन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं रख, तो सोचा कि क्यों ना इन लोगों को शिक्षित किया जाए और इनको इनके मूलभूत अधिकार जो संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं या पर्यावरण के तरह जो दिए गए हैं, और सूचना का अधिकार जो है कि एक बहुत सशक्त माध्यम है जानकारी प्राप्त करने का, उससे लोगों को जो है शिक्षित किया जाए ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो सके और पर्यावरण को बचा सके, अपने जमीन को बचा सके, अपने जंगलों को बचा सके।
रमेश जी, जहाँ तक आपके कार्यक्षेत्र का सवाल है वो ज्यादातर आदिवासी इलाका है, पिछड़ा इलाका है, तो वहाँ पर कितना मुश्किल हुआ आपको ये काम करना, जागृति फैलाना कि उद्योगीकरण से कितना नुकसान हो रहा है पर्यावरण को?
जी, ये वास्तव में हमारे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि ज्यादातर आबादी जो आदिवासी क्षेत्रों में है वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उनको उतनी ज्यादा जानकारी और ना उनको ज्यादा सरोकार होता है राजनीति से या उन सब चीजों से, जब तक कि उनके हितों पे सीधा सीधा उनका प्रभाव ना पड़े, जैसे कि जमीन है, पानी है और आपका जंगल है। जब इनके ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू हुआ औद्योगिकरण के कारण, तब वो सचेत हुए और तब हमारे लिए कुछ आसान था उनको ये सब बताना कि इनके खिलाफ आपको एकजुट होके आपको आवाज उठानी होगी, और तभी आप इनके जो दुष्प्रभाव है औद्योगिकरण के इनको आप रोक पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप साथ आके संघर्ष करें और हर फोरम पे जो भी सरकार ने बनाई हुई है उस पे अपनी आवाज को उठाएं आप। एक ये चैलेंज था कि जो भी कानून या जो भी कुछ हमको डॉक्यूमेंट्स मिलते थे वो ज्यादा करके अंग्रेजी भाषा में हुआ करते थे, तो उनको हम उनकी भाषा में, हिंदी में या जिसमें वो समझ सके, साधारण भाषा में उनको समझाने की कोशिश करते थे। कम्युनिटीज के बीच में, समाज के बीच में जाके छोटी छोटी मीटिंग्स करना, गाँव गाँव जाना, तो ये एक जागरूकता फैलाने का हमारा अभियान रहा है और अभी भी हम वही कर रहे हैं और इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं।
जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जब हमारे पास साधन है, जो हमारे पास रिसोर्सेस है, उसका सही उपयोग किया जाए तो जन कल्याण के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे कि आपने कहा कि सूचना अधिकार का उपयोग करके उनको सशक्त बनाया जाए, तो कैसा रहा ये सफर, क्या क्या चैलेंजेस आए इसमें?
सूचना का अधिकार एक बहुत ही सशक्त कानून है और इसके द्वारा हम किसी भी सरकारी ऑफिस से कोई भी जानकारी हम उससे मांग सकते हैं। तो हमारे आसपास में जो कुछ भी हो रहा है और हमको लगता है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उससे संबंधित जानकारी, फाइलें निकाल के हम वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना विरोध जो है प्रकट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसका प्रभाव ये देखने को मिला कि भूमि अधिग्रहण हो रहा था, अक्सर लोग उसके बारे में जानते ही नहीं थे और उनके भूमि का अर्जन हो जाता था। तो सूचना के अधिकार का जब हमने उनको बताना शुरू किया, तो जब उन्होंने इसका प्रयोग किया तो मालूम उनको चलता था कि ये जमीन हमारी जो है अब जो है जाने वाली है किसी भी प्रयोजन के लिए, तो वो अपने आप को उसके लिए तैयार करते थे कि हमें देना है कि नहीं देना है, किसकी किसान की कितनी जमीन जा रही है और क्या हमको उसका मुआवजा सही रूप से इसका मिल रहा है, तो वो खुद डिसाइड करने के लिए जो है सक्षम हो जाते थे। पर्यावरण की बात करें तो वो भी देखते थे कि उद्योगों को किस आधार पे, कौन कौन सी शर्तों के आधार पे उद्योग लगाने की मंजूरी दी गई है ताकि प्रदूषण से वो बच सके, तो सूचना के अधिकार के तहत वो जानकारी निकालते थे। तो ये सूचना का अधिकार है, लेकिन इसमें दिक्कत जो आती है, सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है कि सूचना के अधिकार के समय जब हम जानकारी निकालते हैं, समय हमारे पास में ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, और जब ये जानकारियां जो है सामने आती हैं, तो वो लोग जो सूचना के अधिकार के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनको किसी न किसी तरीके से दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके भी साधन है, आपको उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है और जानकारी आपको मिलती है।
रमेश जी, आपकी ऑस्ट्रेलिया की जो मुलाकात है उसके बारे में बात करते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया आए हैं औद्योगिकरण से पर्यावरण को जो खतरा हो रहा है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उसके बारे में हल्की सी झलक श्रोताओं को देंगे?
औद्योगिकरण से जो प्रदूषण हो रहा है वह कोई एक देश की चिंता नहीं है, वह केवल भारत की चिंता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की चिंता नहीं है, अमेरिका की चिंता नहीं है, आज ये विश्वव्यापी एक मुद्दा हो गया है। तो इन सब मुद्दों पे जो है यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया में भी जो है कई कोयला खदाने हैं और हैं जिनके दुष्प्रभावों से लोग बाग जो है प्रभावित हैं, इसीलिए जो है कि मैंने हमारे जो अनुभव है उसके आधार पे मैं चाहता था कि यहाँ के लोग भी जाने कि आखिर हम भारत में रह के क्या कर रहे हैं और किस तरीके से हम कुछ हद तक इन सब चीजों को रोकने में सफल हुए हैं, तो अपने अनुभव का शेयर करने मैं ऑस्ट्रेलिया आया।
बात करते हैं आपके अचीवमेंट्स की।
जस्ट पहले तो मैंने सोचा कि ये किसी ने मुझे ऐसे ही फोन कॉल करके जो है इसकी जानकारी दी है, और लेकिन जब मैंने अपने मित्रों से और सब जानकारी दी और उनके बारे में जाना, विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, इसको गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज बोलते हैं और एक किस्म से इसको अल्टरनेट रूप में जो है ग्रीन नोबल प्राइज कहते हैं, ये सम्मान मिला जिसके लिए मैं जो कम्युनिटी जिनके साथ मैं काम करता हूँ, ये सम्मान मैंने उनके लिए जो है प्राप्त किया। ये
रमेश जी, आशा करते हैं कि आपकी जो ऑस्ट्रेलिया की टूर है वो बहुत ही सफल रहे और आप पर्यावरण संवर्धन क्षेत्र में इसी तरह कार्य करते रहें। SBS हिंदी से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।